चंद्रमा, प्रकाश और आकाश तीन चीज है। चंद्रमा की तो भगवान का ध्यान, चांदनी भगवान का प्रकाश, आकाश निराकार भगवान का रूप। जैसे आकाश उसमें चंद्रमा और उसमें चांदनी, ऐसे ही निराकार आकाश के समान साकार भगवान का रूप और भगवान से निकलने वाली, चांद से निकलने वाली चांदनी के समान भगवान की कृपा, दिव्य छटा, ये सब चांदनी के समान है। भगवान के राज्य में अपराध करोगे तो दंड मिलेगा। जैसे आकाश से बिजली गिरती है, दुख होता है और अनेक प्राणियों को मरना भी पड़ता है, ऐसे ही भगवान के राज्य में अपराध करेंगे दंड मिलेगा। जो कसाई गाय को मारते हैं तो गाय के लिए तो प्रारब्ध है, उसके तो भाग्य में जितनी उम्र है उतनी है, प्रारब्ध से मर रही है, पर कसाई को पाप लगेगा, क्योंकि कसाई का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि वो गाय को मारे। कसाई का क्रियमाण कर्म है गाय को बचावे। जैसे एक को, अमुक व्यक्ति को इस टाइम पर फांसी होगी और वो आदमी फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, उसी समय बीच में उस फांसी लगने वाले आदमी का बैरी आ गया और वो कहता है कि जी ये मेरा बैरी है, आप इसको फांसी पर चढ़ा ही रहे हो, मार तो रही हो, मैं इसको मारूंगा। तो जल्लाद कहेंगे कि तुमको मारने का हुक्म नहीं है। जल्लाद बीच में कुछ रोका टोकी करे तो जल्लाद तो अलग खड़े हो गए और उस आदमी ने अपना बैर निकालने के लिए तलवार ली और उसे मार डाला। तब राजा ने उस मारने वाले को बुलाया और कहा कि भाई तुम उस आदमी को क्यों मारे। उसने कहा कि उसने मेरा बहुत बिगाड़ किया, तो फिर तुमने यहां मुकदमा क्यों नहीं किया, तुम उसको मारने वाले कौन। वो कहता है कि अन्नदाता, आप भी तो उसको मारने के लिए भेज रहे थे, मैंने मार दिया। नहीं, तुमको मारने का कोई हक नहीं था, जाओ तुमको दंड मिलेगा। अब उसको दंड मिला। कोई पाप और अपराध करता है, कोई पाप और अपराध करता है तो उसे ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा ही। जैसे एक आदमी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो राजा उसे दंड देगा ही। वहां ये बात नहीं हो सकती कि साहब मैं तो ये बात जानता ही नहीं था। मनुष्य को राज्य की सारी बातें जानना चाहिए, उसका कर्तव्य है। जानवर के लिए ऐसा नहीं होता। गाय किसी के सींग मार दे तो गाय पर मुकदमा थोड़ा ही चलता है, गाय को दंड थोड़ा ही मिलता है, क्योंकि गाय के लिए आज्ञा नहीं है कि तुम अपना सींग मत हिलाओ, वो तो पशु है। भगवान ने हमें आज्ञा दी है कि तुम बीमार हो, कहीं लगी है तो तुम मल्लम पट्टी करो, तुम सेवा करो, तुम सुख पहुंचाओ, माता पिता पति आदि की सेवा करो, कुटुंबी जनों की सेवा करो, भगवान की आज्ञा है। इसके विपरीत चलेगा तो सजा मिलेगी। संसार की माया के बीच में भक्ति का प्रचार करना भक्तों का काम है, भगवान का नहीं है। भगवान अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए क्यों आगे आएंगे? भगवान के लिए तो ये शर्म की बात है, अपनी भक्ति का प्रचार भगवान कैसे करें? ये भक्त का काम है, परमात्मा उसमें मदद देते हैं। भगवान की भक्ति का प्रचार करना भगवान का कर्तव्य नहीं है, वरन अपने लोगों का है, सुनने वालों का है, हर एक आदमी का है। हर एक आदमी जो है पैसा कमाने के लिए दलाली करके सौदा पटाते हैं, तो ये सौदा पटाना चाहिए, अपने को भगवान का दलाल बनना चाहिए और भक्ति का सौदा पटाना चाहिए। जैसे सौदा पटाने वाला माल की बहुत महिमा गाता है कि बहुत अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, बड़ा अच्छा माल है, अभी तो सस्ता मिलता है, आपको ले लेना चाहिए, आगे इसका भाव बढ़ने वाला है, हमारी गारंटी है, हम आपको अच्छी पार्टी के साथ अच्छे दाम में बिका देंगे। ऐसे वो माल का गुणगान गाता है, मालिक का गुणगान गाता है, सौदा पटा ही देता है। इसी प्रकार से अपने को धर्म का, भक्ति का सौदा लोगों के बीच में करना है और ईश्वर की महिमा बतानी है। ऐसे ईश्वर हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, ये सौदा करना चाहिए। सदाचार और ईश्वर भक्ति दो बातों का प्रचार करना अपना बड़ा भारी कर्तव्य है। असली प्रचार अपने आचरण से होता है। कई लोग ऐसे हैं जो भक्ति के प्रचार की बात तो करते हैं पर अपना प्रचार करते हैं। भगवान की भक्ति के प्रचार के बहाने से अपने में लगाते हैं, ये बहुत भगवान के साथ अन्याय करते हैं। अपने जीवन में आचरण में बात लाओ, उससे जो सात्विक प्रचार होगा वो कहने से नहीं होगा। असल में भक्त भी वही है जो भगवान की भक्ति को अपने जीवन में लाकर फिर प्रचार करता है। अपन जितने मिल बैठे हैं, यदि कोई एक इनमें से मिले तो बड़े मुग्ध होकर मिले, आपस में मिले, बड़े प्रेम से मिलो, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मिलते तो अपन हैं और प्रसन्न भगवान हो जाते हैं। आपस में, परिवार में, कुटुंब में, पड़ोस में, सब में प्रेम भावना होने से भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपने लोगों में जहां हृदय में स्वार्थ घुसा हुआ है वहां प्रेम का निवास होना चाहिए। स्वार्थ के कारण से तो मीठा बोल लेंगे, स्वार्थ के कारण से दूसरे की कड़वी बात सहन कर लेंगे, स्वार्थ के लिए हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे, परंतु प्रेम के लिए हम ऐसा नहीं करते। कितनी बड़ी भारी हमारी भूल है। परमात्मा के विषय का संबंधी आदमी मिले तो बहुत मुग्ध होना चाहिए, समझना चाहिए आज हमको भगवान से भी बढ़कर चीज मिल गई। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, लेकिन भगवान के प्रेमी लोग सब जगह नहीं होते। आप परमात्मा के विषय की बातों से जितने प्रसन्न हो जाओगे और परमात्मा की तरफ चलने वाले लोगों से आप बड़े प्रसन्न हो जाओगे, उन पर मुग्ध हो जाओगे, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी है ही नहीं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक उनके भक्तों से खूब प्रेम से मिलो। आपके ये असली कुटुंबी हैं, जो सत्संग भजन करने वाले हैं वो असली आपके कुटुंबी हैं, खास कुटुंबी हैं। संसार के कुटुंबियों में तो मोह होगा तो हमारा पतन होगा, लेकिन परमात्मा की तरफ चलने वाले जो लोग हैं, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मतलब भी नहीं, उनमें प्रेम होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। प्रेम इतनी ऊंची चीज है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक उनके भक्तों से खूब प्रेम से मिलना चाहिए, इससे उसकी भक्ति का प्रचार बढ़ता है। उद्धव जी आए तो गोपियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ऐसी प्रेम की कथाएं गोपियों ने रो रो करके सुनाई, हंस हंस करके सुनाई। उद्धव जी के ऊपर गोपियों का जो असर पड़ा ऐसा भगवान का भी नहीं पड़ा। भगवान के पास से तो आए ही थे, पर गोपियों के पास जब मिलकर भगवान के पास गए तब उद्धव जी और ही हो गए। ऐसे अपने लोगों पर असर पड़ना चाहिए। सब लोगों को समझ बूझ कर खूब जोरों से इस प्रेम की प्राप्ति में लगना चाहिए, लगाना चाहिए। जहां आसक्ति और स्वार्थ का काम आए तो वहां बुद्धि की तलवार द्वारा सबको हटा दो, काट डालो। आसक्ति है, स्वार्थ है, मोह है, स्वार्थ परायणता है, इन सबको काट डालो। काय से? बुद्धि की तलवार से, समझ की तलवार से। अपन कोई भी काम कर रहे हैं, पाप का, झूठ का, छिपाव किया, तो उस बात को इन सत्संग की बातों से झटपट काट डालो। यदि थोड़ा थोड़ा इनसे सुख लेते रहेंगे तो ये हमारे अंदर जगह कर लेंगे। इसलिए गीता में राग और द्वेष को दस्यु कहा है। दस्यु, दस्यु माने डाकू, छिप, वो ठगने वाले, ठगोरे। ऊपर से मीठी बात करते हैं और अंदर ही अंदर से उसको लूट लेते हैं। इसलिए जो ही पाप की वृत्ति, झूठ की वृत्ति, कोई छिपाव वाले काम की बात आए, त्यों ही अपने सत्संग की बातों से उनको काट डालो। जो चीज वास्तव में अपनी नहीं है पर अन्याय से हमको रुपया मिलता है, लाखों रुपया मिलता हो तो उन लाखों रुपयों को बिल्कुल मिट्टी के समान समझो। बेहक का रुपया बहुत खराब होता है, उससे मन में शांति नहीं मिलेगी और परलोक बिगड़ जाएगा। अन्याय से, हम तो कहते अन्याय से यदि मुर्दा भी जी जाए तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। खूब शूरवीरता रखो। देखो युद्ध में क्या क्या बात दिखाते हैं। जैसे पांडवों की सेना डर के भाग रही है, वहां भीमसेन आकर जोर से लताड़ते हुए कहते हैं डरो मत, लड़ो या मरो। तुम लोग यदि भाग जाओगे तो हमारी बदनामी होगी, तुम्हारे आगे हम खड़े हैं, मरेंगे तो पहले हम मरेंगे। इसलिए भीमसेन की बात सुनकर वापिस सेना लड़ने लगी। ऐसे ही सत्संग की बातों के अंदर भीमसेन जैसी ताकत समझो और खूब इनके पाप मोह स्वार्थ आदि से लड़ाई करो, अंत में विजय तुम्हारी होगी। ये वीरता लाओ। क्या है ये काम क्रोध भय लोभ मोह? ये कोई ज्यादा ताकत वाले नहीं हैं। लोगों के अंदर भी जोश भरो। लोगों को आप अपने स्वभाव से बदल करके बताओ कि देखो सत्संग से कितना असर पड़ता है, हम कैसे थे कैसे हो गए। एक एक आदमी चाहे कि 50-50 100-100 200-200 आदमियों को सत्संग में लाने की दलाली करो, 100-150 दलाली करो। पीछे उसने क्या किया, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, पीछे की सब बात भूल जाओ। अरे आपको पिछले जन्म की बात याद है क्या? क्या पता आपका भाई पिछले जन्म में आपका शत्रु हुआ हो तो? क्या पता आपका बेटा पिछले जन्म में आपका कोई गला काटने वाला शत्रु कभी रहा हो तो? कैसा प्रेम करते हो? कोई आपको कह दे कि देखो ये तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म की डाकिन थी और डाकन होकर के तुमको खाई थी, तो क्या पत्नी को छोड़ दोगे? ये कहा कि नहीं, पिछले जन्म की बात गई, इस जन्म में मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, स्नेह करते हो। ऐसे ही इस जीवन की पिछली बातों को एकदम भुला दो, मिट्टी में मिला दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और भजन में मन लगाओ। भजन करते हो, बीती बातों को याद करते हो, किसी को शत्रु समझते हो, किसी को बैरी समझते हो। कोई आपका बैरी नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं, कोई आपका मित्र नहीं, आपका मन ही शत्रु मित्र बनकर आपको भटका रहा है। सावधान हो जाओ। ये सब बातें याद रखने की हैं। जो याद रखने की बात है उसको तो रखते नहीं, और जिनको भुला देना चाहिए उसको भुलाते नहीं। ईश्वर की भक्ति और सदाचार, सदाचार माने व्यवहार सुधारना, समाज सुधारना, व्यापार सुधारना, कुटुंब सुधारना, इन दो का जितने जोर से प्रचार हो उतना अच्छा है। आपके अंदर यदि जोर से इच्छा होगी और आप यदि इसमें निमित्त बन गए तो भगवान की तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। और भगवान बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये भगवान का काम कर रहे हो। जैसे कोई आदमी राज का काम करता है, खूब काम करता है, तो राज तनख्वाह भी देती है, इनाम भी देती है, उसकी महिमा के लिए उसको सर्टिफिकेट भी देती है कि भाई इस आदमी ने खूब काम किया, धन्यवाद देती है, उसका प्रचार करती है। ऐसे भगवान निमित्त आप बन जाओगे तो खूब खुश होंगे। सत्य का पालन करो। कभी कोई किसी प्रकार की बात हो जाए परिवार में, आपस में, कोई व्यापार में, हमारे व्यवहार से कोई नाराज हो गया या अगले के व्यवहार से हमारे मन में तकलीफ हुई, तो सबसे पहला काम अपना दोष देखने का है। कितनी बढ़िया बात है, घर में कोई लड़े, कोई बात हो जाए तो पहले ही पहले आप रो दोष मानो कि मारे काई मारी भूल है कठिन कठिन। जो अपना दोष मानकर चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है, और जो अपने दोष को स्वीकार करता है कि मेरी गलती है, चाहे वो हो अगले की हो, लेकिन अपनी गलती मानता है, उससे अगले का बहुत सुधार होता है। अगले को दोष देता है वो अपनी गलती को छिपाता है, और अगले आदमी को दोषवान बनाता है, डबल उसको नुकसान होता है। सत्य का पालन करो। गीता जो है वो ज्ञान से फल देने वाली है, बांचने से नहीं, ज्ञान से फल देती है। गीता जी जो है वो ज्ञान से फल देने वाली है, बांचने से नहीं, परंतु विष्णु सहस्र नाम बांचने से फल देने वाली है, क्योंकि वह तो केवल जप है, गीता जप थोड़े है। गीता को समझ में लाकर काम लाने से फायदा होगा। एक आदमी एक श्लोक का ध्यान से पाठ कर काम में लेवे तो उसको खुद को लगेगा कि ओहो मैं कितना भूल में था, इस श्लोक की जानकारी से पहले कैसा करता था। उसका एकदम अपने जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। भगवान का गुण प्रभाव गाना प्रचार करना ये भक्त का काम है, और भक्त का प्रचार करना ये भगवान का काम है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। जो लोभी का मन रुपये में रमे और कामी का कामिनी में रमता है, उसी तरह भगवान में मन रमना चाहिए। आंख बंद करते ही सबसे पहले भगवान याद आने चाहिए। उदाहरण तो कोई है नहीं, किंतु सांसारिक उदाहरण देना देकर समझाना पड़ता है। आनंद में खूब मगन रहो, ये बताया ना, लोभी का मन रुपये में रमे, कामी का कामनी में रमे, ऐसे भगवान में मन रमना चाहिए। उदाहरण तो हम यही दे सकते हैं, दूसरा उदाहरण कोई है ही नहीं। आनंद में खूब मग्न रहे, चिंता को कोसों दूर रखे, खूब प्रसन्न हो गया ऐसा मालूम पड़े तो समझो कि हम परमात्मा के निकट जा रहे हैं। ये बात कोई कठिन नहीं है। डरो मत, हिम्मत करो। शोक चिंता मोह को पास में आप मत आने दो। देखो आपके अंदर कितनी आनंद की लहरें दौड़ती हैं, आनंद ही आनंद का अनुभव करो। बार बार ये विचार करो कि चिंता शोक क्यों आता है, हम नहीं चाहते हैं फिर शोक क्यों होता है, चिंता क्यों आती है, क्या बात है। बहुत से लोग तो ये समझ लेते हैं कि शोक आना स्वाभाविक है, घर में कोई मर गया तो शोक होना स्वाभाविक है, रोना धोना स्वाभाविक है, चिंता करना स्वाभाविक है, मोह करना स्वाभाविक है, ऐसा करके इन दोषों को मजबूत करते हैं। बहुत से लोग तो यही समझ लेते हैं कि भाई ये तो भाग्य से होता है शोक चिंता, हम चाहते थोड़े ही शोक करना फिर भी शोक हो रहा है, तो ये भाग्य से हो रहा है, क्या बताएं। लोग सत्संग करते नहीं, मन घड़ंत बातें कर लेते हैं, आधी बात सुनते हैं आधी बात समझते नहीं, उसी ये सब भाग्य की बात है, प्रारब्ध की बात है। हम कहते हैं प्रारब्ध नहीं है, ये मूर्खता है। जैसे कोई आदमी नेत्रवान है और सामने पत्थर पड़ा है और वो प्रमाद से दौड़ता दौड़ता उस पत्थर से टक्कर खाकर गिरता है, कहता है भाग्य से द्वारा गिर गया। अरे तेरे पास नेत्र थे, तेरे सामने पत्थर दिख रहा है, अलग होके जाता, मूर्खता है। प्रारब्ध से संबंध होता तो ये चिंता ये शोक ये मोह ये राग ये द्वेष महात्माओं के भी होने चाहिए। क्या महात्माओं के बुखार नहीं आता है, क्या महात्माओं को बीमारी नहीं लगती है, क्या महात्माओं का अपमान नहीं होता है, क्या महात्मा के लिए अपयश की बातें नहीं होती है, प्रारब्ध से होती है। लेकिन चिंता शोक ये सब महात्माओं को नहीं होते हैं। यदि महात्माओं के अंदर भी चिंता शोक वगैरह होगा, काम क्रोध लोभ वगैरह होगा, तो फिर ये उपदेश देना फिजूल है। भगवान ने भी गीता का उपदेश दिया, वो भी फिजूल हो जाएगा। भगवान ने यही तो कहा कि चिंता मत कर। गीता में कब कहा कि तू बीमार मत हो, अस्वस्थ मत हो। गीता में तो कहा है कि भाई शोक मत कर, चिंता मत कर, भय मत कर। भगवान तो अर्जुन की मूर्खता ही तो सिद्ध कर रहे हैं। चिंता मोह आदि में पड़े हुए को मूर्ख मान ले तो कोई आठ नहीं है। जो मन में आए सो कह देता हूं। जितने आदमी बैठे हैं सुन लो, यह मन में नहीं धारणा चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। कोई सा भी बड़े से बड़ा काम हो, ध्यान से सुने, कोई सा भी बड़े से बड़ा काम हो, ईश्वर पर विश्वास है तो उस पर भगवान की दया है, तो भगवान का आसरा है, तो निश्चित वो काम पूरा होगा। हर एक का काम पूरा हो सकता है। जैसे कठपुतली काम करती है उसी तरह भगवान काम करा लेते हैं। आप भगवान की कठपुतली तो बनो, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में तो दो। आप भगवान के हाथ में तो डोरी देते नहीं और खुद कठपुतली की तरह नाचना भी चाहते हो, तो फिर नाच लो, देखें नहीं नाच सकते। कठपुतली लकड़ी की कैसे नाचेगी। इसलिए जो आदमी भगवान के शरण होता है और अपने आप को भगवान को सौंप देता है, उस आदमी की सब काम की जिम्मेवारी भगवान पर आती है। अर्जुन भगवान के शरण में चले आए तो अर्जुन भगवान की शरणागति के बाद पाशुपतास्त्र भगवान की कृपा से स्वप्न में प्राप्त किया। भगवान ने देखा कि कल के युद्ध में पाशुपतास्त्र की बड़ी जरूरत पड़ेगी और अर्जुन पाशुपतास्त्र को जानता नहीं है और कल के युद्ध में पाशुपतास्त्र चाहिए। तो अर्जुन तो आराम से सोए हुए हैं और अर्जुन के पास भगवान बैठे हुए हैं और स्वप्न के द्वारा अर्जुन को भगवान शंकर के पास भेजते हैं, स्वयं भी साथ में जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, कृष्ण आप कैसे पधारे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे शंकर भगवान, अर्जुन मेरा है। अर्जुन के पास आपका अस्त्र नहीं है, आप विद्यमान है ना प्रभु, मेरे अस्त्र की क्या जरूरत है। जो मेरे पास अस्त्र वो तो आप भी दे सकते हो। नहीं शंकर भगवान, आपके मुख से आपका अस्त्र अर्जुन के लिए विजय दिलाने वाला होगा, इसलिए मेरी गरज पूरी करने के लिए मैं अर्जुन को आपके पास लाया हूं। भगवान शंकर अर्जुन पर ऐसी कृपा देखकर ऐसे मुग्ध भाव से पाशुपतास्त्र दिया तो अर्जुन को भी बड़ा आनंद का अनुभव हुआ और उस आनंद में अर्जुन को चेत हुआ। कहने लगे, कृष्ण कृष्ण मुझे बड़ा अच्छा सपना आया अभी। अनजान से बने हुए भगवान ने कहा, क्या हुआ अर्जुन। ओहो, आप मुझे भगवान शंकर के पास ले गए और उन्होंने कृपा करके मुझे पाशुपतास्त्र दिया और ऐसी ऐसी विद्याएं बताई, मुझे आता ही नहीं था पाशुपतास्त्र, वो मिला और वो पाशुपतास्त्र का ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा कि उसका प्रयोग संहार सब जानते हो ना, भगवान ने सब बता दिया। ये भगवान के शरण होने की बात है, भगवान का ये स्वभाव है। ध्यान से सुने, भगवान का ये स्वभाव है, जो सच्चे हृदय से भगवान का शरण हो जाता है, भगवान उसका त्याग कर नहीं सकते हैं। ऐसी बात कहने वाले महात्मा नहीं हो तो कौन भगवान की तरफ लगे, कैसे विश्वास हो। नारायण 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 नारायण।
मिलियो जाने मरनो पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रे। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रे।
लाख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी।
जम राजा रो आवे रे झूल रो, जम राजा रो आवे रे झूल रो। प्राण पलक में छूटे रे, प्राण पलक में छूटे रे। हिचकी हाल हचीड़ो हाले, नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे। हिचकी हाल हचीड़ो लागे, नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रे। लाख उपाय करो मन कितना, भजन बिना नहीं छूटे रे। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी। भाई बंधु थारो कुटुंब कबीलो, भाई बंधु थारो कुटुंब कबीलो। राम जी रूठ्या सब रूठे रे, राम जी रूठ्या सब रूठे रे। एक पलक में परले होसी, एक पलक में परले होसी। गाल रथी में तन कुटे रे, गाल रथी में तन कुटे रे। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौत नगारो सिर कुटे रे। लाख उपाय करो मन कितना, जीवड़ा ने ले जब जमड़ा चाले, जीवड़ा ने ले जब जमड़ा चाले। क्रोध कर कर कूटे रे, क्रोध कर कर कूटे रे। गुरजारी घमसान मचासी, गुरजा रिघम शान मचासी। तुरत ताहल वो फूटे रे, तुरत ताहल वो फूटे रे, जन्म लियो जन मरनो पड़सी, मौत न गारो सिर उटे रे, लाख उपाय करो मन कितना। जीवड़ा ने जमले नरकम डाले, जीवड़ा ने जमले नरकम डाले, कीड़ा कागला चूटे रे, कीड़ा कागला चूटे रे, भुगते लो जीव भजन बिनो भैया, भुगते लो जीव भजन बिनो भैया, जमड़ा जुगो ही जुग कूटे रे, जमड़ा जुगो ही जुग कूटे रे, लाख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी। थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, करमड़ा काठा थारा फूटे रे, करमड़ा काठा थारा फूटे रे, करमारो हीन कीचड़ में कलियो, करमारो हीन कीचड़ में कलियो, बिना भजन नहीं छूटे रे, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी। आ राम सुमिर ले सुखरत कर ले, राम सुमिर ले सुखरत कर ले, मोह बंधन तब टूटे रे, मोह बंधन तब टूटे रे, कहत कबीर सुख चावे जीव तू, कहत कबीर सुख चावे जीव तू, राम ना हम धन लूटे रे, राम ना हम धन लूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी।
पांच लोग बोलो।